नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रायसीना संवाद आज नई दिल्ली में शुरू होगा। नेपाल में नई संसद के गठन के लिए मतदान जारी। अमरीकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान का समर्थन किया। और आईसीसी T20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और सुदृढ़ करने पर चर्चा करेंगे, साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
फिनलैंड के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब की भारत की यह पहली यात्रा है। श्री स्टब आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी श्री स्टब से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति स्टब नई दिल्ली में आज शाम आयोजित होने वाले 11वें रायसीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि और प्रमुख वक्ता होंगे। भारत और फिनलैंड के बीच सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और बहुआयामी संबंध है जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। फिनलैंड यूरोपीय संघ और नॉर्डिक क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। पिछले महीने एआई इंपैक्ट समिट के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेट्री ओर्पो भी भारत की यात्रा पर आए थे। राष्ट्रपति स्टब की यह यात्रा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने तथा परस्पर संबंधों को बढ़ाने की दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। फिनलैंड के राष्ट्रपति मुंबई का भी दौरा करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भारत के प्रमुख भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन रायसीना संवाद का 11वां संस्करण आज नई दिल्ली में शुरू होगा। 3 दिवसीय सम्मेलन में वैश्विक नेता, नीति निर्माता, विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और रणनीतिक सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। वर्ष 2026 का विषय है संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति, जो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को दर्शाता है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है।
वर्ष 2016 में स्थापित वार्षिक संवाद अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा के लिए भारत का अग्रणी मंच बनकर उभरा है। वर्षों से इस संवाद में बदलते भू राजनीतिक समीकरणों, जलवायु संबंधी चिंताओं, तकनीकी परिवर्तन, आर्थिक लचीलापन और वैश्विक शासन व्यवस्था के भविष्य जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा होती रही है। सम्मेलन में कई विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के भाग लेने की उम्मीद है। भूटान के विदेश मंत्री ल्योपो दीनानाथ धुंगेल कल भारत पहुंच चुके हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, जो राजकीय यात्रा पर है, रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि और प्रमुख वक्ता के रूप में शामिल होंगे। संयुक्त राज्य अमरीका का प्रतिनिधित्व उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो करेंगे, जो संवाद में अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। अन्य प्रमुख प्रतिभागियों में सेशल्स के विदेश मामलों और प्रवासी मामलों के मंत्री बैरी फॉरे, मॉरिशस के विदेश मामलों, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री धनंजय रामफुल और श्रीलंका के विदेश मामलों, विदेश रोजगार और पर्यटन मंत्री विजीथा हेरत शामिल है।
नेपाल में संसदीय चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। ये चुनाव पिछले वर्ष सितंबर में युवा नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के बाद पहला आम चुनाव है। उन प्रदर्शनों में 77 लोगों की मौत हुई थी और सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
नेपाल में प्रतिनिधि सभा के सदस्य चुनाव के लिए देश भर में मतदान प्रक्रिया आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। देश भर के सभी 77 जिलों में एक ही चरण में मतदान हो रहा है, जो सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। कुल 65 राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली में 3017 पुरुष उम्मीदवार हैं और 388 महिला उम्मीदवार हैं और एक अन्य है, जिससे चुनावी दौड़ में कुल 3406 उम्मीदवार हैं। इसी तरह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत 3135 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 1363 पुरुष और 1772 महिलाएं शामिल हैं। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, काठमांडू।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज हो गया है। इजरायली रक्षा बलों ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल बेड़े से जुड़े कई ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया है। इससे पहले इसराइल ने पूर्वी तेहरान में ईरान के बड़े सैन्य परिसर पर हमला किया था। इस परिसर में IRGC, खुफिया निदेशालय, बासिज, कुद्स फोर्स, आंतरिक सुरक्षा बल, साइबर युद्ध बल और विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए जिम्मेदार आंतरिक सुरक्षा इकाई का मुख्यालय शामिल है। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध में अमरीका और इसराइल मजबूत स्थिति में है और वो आगे भी कार्रवाई जारी रखेंगे। एक रिपोर्ट।
इजरायली वायुसेना ने बेरूत में हिजबुल्ला के ठिकानों पर फिर से हमले शुरू करने की जानकारी भी दी। उधर अमेरिकी केंद्रीय कमान के कमांडर एडमिरल ब्रेड कूपर ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर जानकारी देते हुए कहा कि 100 घंटे से भी कम समय में लगभग 2000 लक्ष्यों पर हमले किए गए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि अमरीका और इसराइल द्वारा किए गए हमलों के बाद से लगभग 100,000 लोगों ने ईरान छोड़ दिया है। उधर अमरीका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी के अनुसार अब तक ईरान में 1,097 नागरिकों की मौत की सूचना है। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी साइप्रस में हमले के बाद युद्धपोत और वायु रक्षा संसाधन तैनात किए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने कहा कि ईरान द्वारा परमाणु बम बनाए जाने के प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन ईरान के पास हथियार बनाने योग्य समृद्ध यूरेनियम का बड़ा भंडार और निरीक्षकों को पूरी पहुंच देने से इंकार करना गंभीर चिंता का विषय है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध में अमरीका और इसराइल मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल भंडार को तेजी से नष्ट किया जा रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
अमरीकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान का समर्थन किया है। कल रात सीनेटरों ने कांग्रेस की अनुमति के बिना सैन्य अभियान को रोकने के उद्देश्य से लाए गए द्विदलीय प्रस्ताव को रोकने के लिए मतदान किया। सीनेट ने 47 के मुकाबले 53 मतों से प्रस्ताव को आगे न बढ़ाने का फैसला किया, जो मुख्य रूप से पार्टी लाइन के अनुरूप था। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात के बीच अधिक मांग को देखते हुए टोरंटो, फ्रैंकफर्ट और पेरिस चार्ल्स डी गॉल के लिए अतिरिक्त क्षमता वाली उड़ानें संचालित करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एयर इंडिया ने बताया कि आज से 11 मार्च तक दिल्ली और टोरंटो के बीच 3 अतिरिक्त उड़ानें संचालित होंगी। 7 मार्च से 10 मार्च तक दिल्ली और फ्रैंकफर्ट के बीच 3 उड़ानें तथा दिल्ली और पेरिस के बीच 1 उड़ान अतिरिक्त चलेंगी। पश्चिमी एशिया में जारी अस्थिरता के बीच एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। एयर इंडिया ने कहा है कि प्रभावित यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी यात्रा की तारीख बदल सकते हैं या टिकट रद्द करने की स्थिति में पूरा रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। ये सुविधा इस वर्ष 28 फरवरी या उससे पहले की गई सभी कन्फर्म बुकिंग्स पर लागू होगी। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज और अमेरिका के आंतरिक मामलों के मंत्री डग बर्गम ने कहा है कि दोनों देश खनन के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रीय ऊर्जा प्रभुत्व परिषद के प्रमुख बर्गम ने कराकस स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रोड्रिग्ज से मुलाकात की। जनवरी में अमरीकी हमलों और निकोलस मादुरे की गिरफ्तारी के बाद किसी अमरीकी सचिव की ये दूसरी मुलाकात थी। ब्राजील की सीनेट ने मरकासुर ब्लॉक और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दे दी है। ये समझौता दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्रों में से एक है। इस समझौते में दक्षिण अमरीकी व्यापार समूह मरकासुर ब्लॉक के 4 संस्थापक सदस्य शामिल हैं, जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे है। अर्जेंटीना और उरुग्वे पहले ही समझौते को मंजूरी दे चुके हैं। पैराग्वे की संसद को अभी इसे मंजूरी देना बाकी है। कांगो के पूर्वी क्षेत्र में कोल्टन खनन स्थल पर हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 200 से अधिक हो गई है, जिसमें लगभग 70 बच्चे शामिल हैं। भारी बारिश के कारण मंगलवार को उत्तरी कीवू प्रांत के रुबाया खनन क्षेत्र में ये भूस्खलन हुआ। इसमें खनिक, खाद्य विक्रेता और अन्य छोटे व्यापारी दब गए। मरने वालों में अधिकतर पारंपरिक खनिक थे, जो खदान में कोल्टन का खनन करते थे। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज भारत और इंग्लैंड के बीच होगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे से ये मैच खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में कल रात न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रायसीना संवाद आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। नेपाल में नई संसद के गठन के लिए मतदान जारी। अमरीकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान का समर्थन किया। और खेलों में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।